الله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آج کی کلاس میں ہم سورۃ النمل کی کے معارف و مسائل پڑھنا جاری رکھیں گے. پیج نمبر 577 کے اوپر ہم ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 6 میں. اور اس میں واقعہ چل رہا ہے کہ جب ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کے دربار کی خبر لے کر کے آیا تھا، پھر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ جو ہے وہ اپنا ایک خط بھجوایا ملکہ سبا کو. تو ہدہد نے ان کے پاس جا کر کے جب اپنا خط ڈال دیا تو اس نے، یعنی ملکہ سبا نے، اپنے سرداروں سے کہا، یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ بے شک میرے پاس ڈالا گیا ہے ایک بہت ہی معزز خط، معزز خط، عزت والا خط. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ لکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی، مہر باقاعدہ سٹیمپڈ تھا وہ. تو ایک تو مہر سے جو ہے نا وہ کسی خط کے امپورٹنٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آج کل لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں، کمپنی لیٹر ہیڈ کے اوپر یا گورنمنٹ کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر کوئی چیز آئے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور دوسری اس کے اندر معزز بات کیا تھی کہ اس کے اندر سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مختصر الفاظ کے اندر زبردست قسم کا مضمون بیان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا. اور آخر اس میں ایک 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 مسئلہ بھی حضرت نے لکھا تھا کہ خط کو لفافے میں، آج کل عادت خط کو لفافے میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے، یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے. جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہو، کھلا خط بھیجنے کی بجائے لفافے میں بند کر کے بھیجنا اقرب الی السنہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آج کل کے دور میں تو ویسے بھی پوسٹل سروس والا وغیرہ کا معاملہ کم از کم، یعنی پرسنل لیٹرز کے حد تک تو تقریباً ہی میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے. ہاں، پوسٹل سروس کا ایک کاروبار نیا چل پڑا ہے، ڈیلیوریز. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ آن لائن آرڈرز کرتے ہیں تو ان کی ڈیلیوریز جو ہے نا، تو وہ پھر پوسٹل سروس کے ذریعے سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں اور کوریئر کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے خطوط لکھنے کا معاملہ ویسے عام آپس میں تو تقریباً ختم ہو گیا. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے جو ہے رشتے دار کوئی دبئی میں رہتا تھا، خالہ جو ہے وہ ایک دبئی میں رہ رہی ہیں، خالہ جو ہے وہ لندن میں رہ رہی ہیں، تو جی وہ ٹیلی گرام کے اوپر جو ہے نا ان کا خط آتا بھی تھا اور ہماری والدہ جو ہے وہ لکھ کر کے جواب بھی دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں فون اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ فون کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن تھا. بہرحال آج جو ہے نا وہ یہ خط کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. جب ہم اپنے مشائخ سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مشائخ ابھی تک واٹس ایپ پر نہیں آئے ہیں نا، آج کل تو ویسے ماشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر ایک مشائخ آ گئے، لیکن ہمارے جیسے حضرت ہیں وہ واٹس ایپ پر نہیں ہے. ایس ایم ایس بھی جو ہے نا وہ چیک کر لیتے ہیں، آج کل شاید وہ بھی چیک نہیں کر پا رہے ہیں صحت وغیرہ کی وجہ سے. تو ان کو ہم باقاعدہ لکھ کر کے خط دیتے ہیں، تو وہ لکھ کر کے جو خط دیتے ہیں نا اپنا، تو وہ کسی لفافے میں، اچھے سے لفافے کے اندر بند کر کے دینا چاہیے. یہ اقرب الی السنہ ہے، اور یہ یعنی مکتوب الہی کا اکرام ہے، اس کے اندر ان کی عزت افزائی ہے. لفافے میں بند کر کے چیز کو دینا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہدیہ وغیرہ بھی دینا ہو تو وہ لفافے کے اندر دینا، ایسے نہیں اٹھا کر کے پکڑا دیا کھلا، ہے نا، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بالکل ہی یعنی بے فکر قسم کے، تو وہ ایسے ہی پکڑا دیا ہاتھ کے اندر جیسے پتہ نہیں کسی دکاندار کو دے رہے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے نا، عزت اور ادب اس کے اندر ہے کہ لفافے کے اندر بند کر کے چیز کو دیا جائے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام گو عربی نہ تھے، لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں. ٹھیک ہے، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے، है ना, मतलब परिंदे कोई एक किस्म के परिंदे, न जाने कितने किस्म के, और हो सकता है हर परिंदों की अलग अलग बोलियां होती हो, वैसे हमें तो सुनाई ऐसे ही देता है, तोते की अलग आवाज होती है और जो फिंचेस होती हैं उनकी अलग आवाज होती है, हमारे घर में आप में से अक्सर ने देखा ही होगा, तो पता नहीं उनकी बोलियां भी शायद उसी हिसाब से अलग अलग ही होती होंगी। तो उनको तो अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियों का इल्म दिया था, तो अरबी जुबान का इल्म कौन सी मुश्किल बात होगी। तो अरबी जुबान तो तमाम जुबानों से अफजल व अशरफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारका है जिसकी सनद जो है वो शायद ज़ईफ से या थोड़ा ज्यादा ही है, यानी मौजू हदीस नहीं है वो, या तो ज़ईफ है या ज़ईफ से ज्यादा बेहतरी उसकी 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 चेन ऑफ नरेशन है, सनद है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अरबों से मोहब्बत करो, अरबों से मोहब्बत करो, ये बाकायदा हदीस मुबारका है कि अरबों से मोहब्बत करो, और फिर उसके बाद तीन वजूहात बताएं कि क्यों अरबों से मोहब्बत करो। फरमाया कि कुरान मजीद अरबी में है, ठीक है, अरबों से मोहब्बत की पहली वजह कुरान मजीद अरबी में है, दूसरी वजह कि जन्नत की जुबान अरबी होगी, और तीसरी वजह कि मैं अरबी नस्ल हूं, मैं अरब अरब हूं, ठीक है, यानी अरबी जुबान बोलता हूं, ठीक है। तो अरबों से मोहब्बत की वजूहात देखें, गौर करें इसके ऊपर, अरबों से मोहब्बत की वजूहात ये नहीं बयान करें कि बड़े नेक होंगे, बड़े पारसा होंगे, बड़े जो है ना वो तमीजदार होंगे, और बड़े अखलाक वाले होंगे, और बड़े मेहमान नवाज होंगे, ठीक है, जैसे मेहमान नवाजी अरबों की वाकई एक सिफत है, आज भी मेहमान नवाजी के मामले में अरब जो है वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। हम तो हैरान होते हैं, बच्चों को लेके कहीं निकले हुए होते हैं ना, तो जगह जगह वो अरब, कोई अरब आंटी हैं, कोई अरब अंकल हैं, वो अपने अपने जेब के अंदर अब या अपने पर्स के अंदर जो है ना उन्होंने कैंडीज रखी हुई होती हैं, वो जहां बच्चों को देखते हैं कैंडी निकाल के देना शुरू कर देते हैं, किसी के पास जो है वो कोई कुकीज रखी हुई होती है वो निकाल के देना शुरू कर देते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार हम भी किसी बच्चे को कुछ दे दें, फिर हमने बड़ा सोच सोच करके याद कर करके कोशिश करी कि अपने पास भी जो है वो कुछ रख लिया करें, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, सच्ची बात है हमसे नहीं हो पाता ये, ठीक है। और अरबों का मिजाज ऐसे है जहां देखते हैं वधर ही कुछ पकड़ा देते हैं, हत्ता कि अभी मदीना मुनव्वरा में ना एक एक हम एक होटल के बाहर खड़े हुए थे, तो एकदम से जो है ना वो एक एक पुलिस वाले आए, पुलिस वाले साहब अपनी यूनिफॉर्म के अंदर, और हमें कहने लगे, यानी मैं और मेरा बेटा खड़ा हुआ था, हमें कहने लगे कि बस इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो, ठीक है, हमने कहा भी ठीक है खड़े रहते हैं। तो वो पीछे गया और अपनी गाड़ी, वहां पे पार्किंग स्पॉट असल में खाली थी, तो वो चाह रहा था कि हम खड़े होकर के ना उसके लिए पार्किंग स्पॉट को रिजर्व कर लें, तो हम खड़े हो गए, हमें अंदाजा हो गया कि वो गाड़ी लेके आने वाला है, तो वो गाड़ी लेकर के आया, उसने पार्क किया और फौरन अपने गाड़ी में से कोई खाने की मीठी चीज निकाल करके हमें पकड़ा दी, ये खाओ तुम, ठीक है। तो अरबों की ये सिफात अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर है कि फिर कुछ बद अखलाकी वाली सिफात भी आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती हैं, और अल्लाह रहम करे कि बहुत सारे गुनाहों वाली बातें भी अब नजर आनी शुरू हो गई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की वजह क्या बताई, उनकी जुबान अरबी, ठीक है। तो अब हमें अरबों से मोहब्बत करने का मतलब क्या है कि इस निस्बत से अरबों से मोहब्बत करें, इस निस्बत से, ये मत देखें कि जी वो कैसे बुरे हैं और कैसे बद अखलाक हैं और कैसे नहीं, वो हैं तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम के खानदान में से, ठीक है, या अरबी नस्ल है, और अरबी जुबान जो है ना वो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाई है। अब अपनी अकल भी तो नहीं है ना यहाँ पर खाली कि हम अपनी अकल से ऐसा काम करें, नबी अलैहिस्सलाम ने जब खुद फरमा दिया तो अब तो हमारी अकल वैसे भी परे रह जाती है, या रह जानी चाहिए हमारी अकल तो, राइट। तो अब उनका गुनाह देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह को जस्टिफाई करें कि नहीं, ये गुनाह का काम नहीं है क्योंकि अरब अरब बंदा कर रहे हैं ना, तो ये गुनाह नहीं होता, नहीं, अरब के अमल से गुनाह सवाब का मियार नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुनाह सवाब का मियार जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात है, शरीयत है, अरब का अमल नहीं है कि उस वो अगर गंदा काम करे तो वो नेक बन जाएगा क्योंकि अरबी अरबी जुबान का बंदा कर रहा था, नहीं, बल्कि अगर वो गुनाह का काम कर रहा है तो हम जो है ना वो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें, ठीक है ना, यानी जाती तौर पर उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें, और उनके लिए कोई ना कोई बस एक्सक्यूज बना ले कि बेचारे क्या शैतान के हाथों बेचारे खेल रहे हैं और अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो गए हैं, और कैसे लोगों ने उनको उल्लू बना के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो से नफरत नफरत का मामला ना करें, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान से या अमेरिका वगैरह से जब देसी हजरात इधर आते हैं ना, तो यहाँ पे आकर के जो उनके साथ फिर सलूक करते हैं वो, तो फिर जो है ना वो अरबी नस्ल इंसानों से फिर नफरत का इजहार करना शुरू हो जाते हैं। ये तो अरबी होते ही ऐसे हैं, ये तो अरब ऐसे लोग हैं, और ये तो अरब वैसे लोग हैं, और ये अरबी तो वैसे हैं। यार इस किस्म की बातें करना ये नहीं करें हम, ठीक है, कहने का ये मकसद है। तो फरमाया कि जब अरबी जुबान तो तमाम जुबानों से अफजल व अशरफ है, लिहाजा हो सकता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत अरबी जुबान में लिखा हो, क्योंकि मकतूब इलैह बिलकीस अरबी नस्ल थी। कैसे पता कि वो अरबी नस्ल थी? क्योंकि वो यमन में रहती थी, और यमन वाले जो लोग हैं ना, ये असलन अरबी यमन के ही लोग हैं, ठीक है, जो अरब बायदा जिनको कहा जाता है ना, ये असल में यमन में आकर के नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे सेटल हुए थे, और यहीं से फिर उनकी नस्लें निकली हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो इवन नबी अलैहिस्सलाम असली अरबी नहीं थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इराकी थे, और इराक में तो एक अलग जुबान बोली जाती थी उस जमाने में। तो लेकिन बाद में इतने 100 साल जब आप सल्लम की नस्लें यहाँ पे सेटल हो गई, तो आप सल्लम भी अरबी ही बन गए, लेकिन अरब बायदा में फिर भी शामिल नहीं हुए। अरब बायदा बिल्कुल ओरिजिनल अरब्स को कहते हैं। तो ये जो थी ना मलका सबा, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल अरब थी। तो उसने खत को पढ़ा भी और समझा भी, तो जाहिर उसी की जुबान के अंदर ये खत होगा। और ये भी मुमकिन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत अपनी ही जुबान में तहरीर फरमाया हो, और बिलकीस के पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान का तर्जुमान हो, जिसने पढ़कर खत सुनाया और समझाया हो, जैसे कि बादशाहों के पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। यहाँ पे चूंकि अरबी जुबान की बात निकल आई है, तो एक और अहम तरीन नुकता या आजिस मेंशन करके जिक्र करके फिर आगे बढ़ेगा, वो ये कि जुबान जो होती है ना, ये जुबान इल्म का आला होती है, टूल होती है इल्म हासिल करने का, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, वो हमें कम से कम नियत करनी चाहिए, और नियत करने के बाद थोड़ी कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी जुबानों को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, ठीक है, और अपनी औलादों की जुबानों को मजबूत करें। जिस भी जुबान के अंदर वो पढ़ रहे हैं या वो इल्म हासिल कर रहे हैं, वो जुबान उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेजी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वक्त वही पूरी दुनिया के हाकिम बने हुए हैं, तो इस वजह से अंग्रेजी जुबान का इल्म हासिल करना ये भी मजबूरन लेकिन हमारे लिए लाजमी हो गया है, ठीक है। तो कम अज कम पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखने वालों को जो है ना, वो इन तीन जुबानों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कम अज कम इन तीन जुबानों के ऊपर, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी, ठीक है। अरबी तो दीन की जुबान है, कुरान मजीद, हदीस मुबारका, और फिका की किताबें, और हमारी जो जो पुरानी असल किताबें हैं, सब के सब अरबी के अंदर है, ठीक है। तो अरबी जुबान जब किसी को आ गई तो उसके सामने पूरा का पूरा खजाना खुल गया, ठीक है। अब ये जो मुतालिया करना होता है ना, ये इंसान के अपने मिजाज और अपने हालात के ऊपर होता है, ठीक है, ये आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं, या अपने एग्जाम्पल के जरिए से अपने बच्चे को जो है ना, वो इस तरफ माइल कर सकते हैं। आप किताब उठाएं ना, किताब उठा करके पढ़े ना, आपका बच्चा भी किताब उठा करके पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना। लेकिन आजकल हम किताब उठाते ही नहीं है, हमारे हाथ में तो सेल फोन होता है ना, तो मुस्तकिल हम फोन बीनी के अंदर लगे होते हैं। तो आप बच्चे से क्या तवक्को करते हैं कि वो कुतुब बीनी के अंदर लगे, राइट। बच्चे ने भी फिर कोशिश यही करनी होती है, किसी तरीके से फोन उसके हाथ आ जाए और वो फोन बीनी शुरू कर दे। बीनी का मतलब तकना उसको, देखना उसको, ठीक है। तो कुतुब बीनी के लिए अगर बच्चों को हम चाहते हैं कि वो अच्छी किताबें पढ़ें, तो हमें भी किताबों का कुछ ना जौक अपने अंदर पैदा करना होगा, ठीक है। अभी और बात है कि फोन के ऊपर ही किताबें, ठीक है, तो वो फोन के ऊपर किताबें हमने तो देखा कि सही मानों में पढ़ी नहीं जा सकती है फोन के ऊपर किताबें। थोड़ी बहुत तो इधर उधर मैसेज आ गया, वो मैसेज पढ़ लिया, उधर से मैसेज आया पढ़ लिया, लेकिन वो किताब पढ़ने वाला मामला फोन के ऊपर अभी भी ऐसा है नहीं। जब भी उन्होंने वो क्या थे, वो रीडर्स जो निकाले थे, एनीवे। तो जुबान, ठीक है, अरबी जुबान अच्छी हो, उर्दू जुबान अच्छी हो, अंग्रेजी जुबान अच्छी हो, तो फिर बच्चे के सामने जाना वो खुल जाता है पूरा का पूरा खजाना, ठीक है। हम जो इतना कुछ बच्चे के ऊपर लोड डाल रहे होते हैं ना, साइंस की तो चलो फिर भी साइंस की चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बड़ा फायदा एक तरीके से रहता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा लिटरेचर का लोड और बहुत ज्यादा जो है ना, वो यानी बच्चों के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स और रटना रटाना, ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा डाल रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि इससे बच्चों को कोई बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है ना। वो असल में फायदा नहीं हो रहा होता बच्चे को, ठीक है। और बल्कि हकीकत तो ये है कि हम लोड ही डाल रहे होते हैं, नॉलेज ट्रांसफर असल में हो भी नहीं रही होती बच्चे को, ठीक है। वो बस ग्रेड्स का मामला है। सिक्स ग्रेड के अंदर उन्होंने किताब के अंदर थोड़ी एक डिटेल पढ़ी, सेवन्थ ग्रेड में आए, सेवन्थ में वही चीजें जो है वो थोड़ी सी और डिटेल के साथ पढ़ ली, एट्थ ग्रेड में आए थोड़ी सी और डिटेल के साथ पढ़ ली। आपका जो है वो अच्छा खासा जो है वो फीस जारी होती है स्कूल वाले के पास, ठीक है, बहुत बड़ी था, बल्कि अच्छी खासी फीस जारी होती है। और बच्चे को जो है ना वो बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ अचीव हो नहीं रहा होता, बल्कि नेगेटिव अचीवमेंट जो है ना, अगर ज्यादा साइकोलॉजिकली आप जाकर के देखें तो नेगेटिवली उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा होता है इन चीजों का। तो असल चीज अगर हम लैंग्वेज का टूल बच्चे को दे देना तो बच्चा फिर उसके बाद यानी सेल्फ लर्निंग मोड में आ जाता है, सेल्फ लर्निंग मोड में आ जाता है। क्योंकि सेल्फ लर्निंग जो है ना ये अल्लाह ताला ने उसके उसकी फितरत में रखी है, ये जो है ना कि सीखना, पूछना, देखना, चीजों के बारे में जानना, ये जो सलाहियत है ना ये हमारी फितरी सलाहियत है जो कि हमें अल्लाह ताला ने दे करके दुनिया में भेजा है, ठीक है ना। इसमें से सबसे अहम, सबसे बड़ी फितरत अपने रब को जानना है, रब को जानना। लेकिन सिर्फ रब को जानने की फितरत नहीं हमारे अंदर, हमारे अंदर अपने इर्द गिर्द की सारी चीजों को जानने की फितरत है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इस फितरत को आप मस्ख कर दें, इस फितरत को आप मस्ख कर दें, खराब कर दें, तो फिर तो भाई वो बंदा रब को भी जानने की कोशिश नहीं करता, है ना। काफिर कैसे बन जाता है, राइट, काफिर कैसे बनता है, उसके माँ बाप, उसका माहौल, उसकी इस फितरत को मस्ख कर देता है ना, जब ही तो बच्चा जो है वो बड़ा होकर काफिर बन जाता है या काफिर बन के बड़ा हो रहा होता है। उसी तरीके से जानने की फितरत को आप टेलीविजन के जरिए से या वीडियो गेम्स के जरिए से या जो है वो इस किस्म की कोई और बुरी लत लगा करके बच्चे की इस जानने और सीखने वाली फितरत को जो है ना माँ बाप मस्क कर देते हैं, एक ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं कि जहां पे कि उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेंशन सवार कर दी जाती है ना, उसके ऊपर बुलियंग हो रही होती है, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, जिस भी शक्ल की बुलियंग हो, राइट। और उसके अलावा दूसरे किस्म के गंदे माहौल होते हैं, इनकी वजह से ना उस बच्चे की जो है ना वो फितरत मस्ख हो जाती है। अब वो जो है ना वो इस इधर उधर से उसका दिल उचाट हो जाता है, तो अब वो जानने की फितरत को जो है ना वो फिर अपने एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। हम बच्चे के पीछे और हाथ धो के पड़ जाते हैं और इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, बल्कि और ट्यूशनें लगा देते हैं, मजीद ट्यूशनें और ट्यूशन पढ़ो, है ना, ताकि तुम्हें जो है ना वो और जो जानने का शौक पैदा हो। वो भाई उसका जानने का शौक आपने मार दिया है, अब मजीद ट्यूशनें लगा लगा करके जो है ना उसके जानने का शौक पैदा नहीं होगा, ठीक है, बस टेंशन उसके ऊपर मजीद आप सवाल करने होंगे। तो कहने का मकसद इतनी सारी तकरीर का ये है कि हमें फोकस जो है ना वो लैंग्वेज के ऊपर करना चाहिए, और लैंग्वेज से जो है ना आप बेसिकली उसकी लर्निंग एबिलिटीज को आप असिस्ट कर रहे होते, आप फ्लरिश कर रहे होते, और यही माँ बाप का काम है या यही किसी एजुकेशन सिस्टम का असल जो गोल, असल जो मकसद है ना वो यही है कि उसकी ऑलरेडी फितरत में जो जानने की सलाहियत मौजूद है उसको बस आप असिस्ट करें, गाइड कर दें, ठीक है ना। और वो फिर अपने पेस के ऊपर फिर जो दौड़ना शुरू होगा ना, फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आपकी तवक्कुआत से ज्यादा आगे दौड़ गया है। बहरहाल आपने क्या लिखा है अभी, मौजूदा हालात में जो हरकतें हो रही हैं, एवरीवन इज अब्यूजिंग अरब्स, इज दिस राइट टू अब्यूज, और गुना अगर खुलकर हो रहा हो तो क्या फिर भी इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि आप गुनाह को जो है वो सवाब कहना शुरू कर दें। आपको समझाया था ना अभी कि अरबों के अमल की वजह से कोई गुनाह का काम जो है ना वो सवाब नहीं बन जाता, ठीक है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, अरब कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप उनके लिए जो है ना बस नरम गोशा रखें और उनके गुनाह को किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो जैसे मलबा डालते हैं ना किसी और के ऊपर, तो उनके गुनाह का मलबा जो है ना वो किसी और के ऊपर डाल दें, चाहे वो शैतान, जाहिर सी बात है शैतान ही है असल में गुनाह करवाने वाला, ठीक है, शैतान के ऊपर डाल दें और जो इंसानी शैतान है उनके ऊपर डाल दें, ठीक है ना। शैतान तो दोनों किस्म के होते हैं ना, जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं। तो अरबों के गुनाहों का मलबा शैतान के ऊपर डाल रहे। और इस हदीस मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें वसीयत करी है अपने अहले वयाल, अपने खानदान है, तो उन इस वसीयत का ख्याल रख ले नबी अलैहिस्सलाम की खातिर। ठीक है, बाकी उनको बुरा भला कहने से आपको कितनी दिक्कतों का सवाब मिलेगा, क्या हो जाएगा, राइट? अपना अमल ठीक करें भाई, राइट? अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपनी नस्लों को जो है बर्बादी से बचाएं। उनको बुरा भला कहने से आपको कोई जन्नत का महल तो नहीं मिल जाएगा ना, राइट? उनको बुरा, किसी को बुरा भला कहने से नहीं मिलेगा, अरबों को बुरा भला कहने से कौन सा जन्नत का महल मिल जाएगा? बल्कि नबी अलैहि सलाम का लिहाज ना करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नुम का कोई कोठरी मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करें। हजरत जिलानी कह रहा कि उनके गुनाह को सवाब करना शुरू कर दें। खत नवीसी के चंद आता, तो अगला उनवान है, तो इसमें फरमाते हैं कि इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, कि बेशक वो जो है सुलेमान की तरफ से है, और वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम ने इंसानी जिंदगी का कोई पहलू नहीं छोड़ा जिस पर हिदायत ना दी। ठीक है, तो हिदायत तो सारी की सारी मौजूद हैं, लेकिन इन हिदायत को समझना, इनको कुरान मजीद से एक्सट्रैक्ट करना, इसके लिए एक मेच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो कि हर एक के अंदर पैदाइशी तौर पर नहीं होती, फितरत होती है। लेकिन फितरत का मतलब ये थोड़ी है कि अब जो है वो आपको हर चीज पैदाइशी तौर पर आ भी गई हो। तो उसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर सब कुछ है, लेकिन हमें भी तो उसके अंदर अपने 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 आप को मेच्योर करना है ना, ताकि हम उसको समझ सकें। तो यही मेच्योरिटी जो है वो इल्म हासिल करना कहलाती है, उसके अंदर फकाहत हासिल करना कहलाती है, और फिर जाकर के आप कुरान मजीद में से ये हिदायत नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वरना आपने इल्म ही ना हासिल किया हो तो हिदायत तो मौजूद है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, या उल्टी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, बदहजमी हो जाती है फिर उसके बाद। आज सुबह खवातीन की क्लास में भी यही बात हुई थी। बहरहाल, तो खतो किताबत और मुरासलत के जरिए बाहिमी गुफ्तोशनीद भी इंसान की अहम जरूरियात में दाखिल है। अब देखिए, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि फकीह हैं, ठीक है ना, 20वीं सदी के फकीह, अगर कोई है तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, तो डेफिनेटली उनमें से है। ठीक है, तो इन्होंने देखें, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, है ना, हम तो उसको पढ़ करके हमारे क्या समझ में आएगा इसके अंदर किस चीज की तरफ इशारा है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर से कैसी हिदायत अखज करी, क्योंकि फकाहत के दर्जे पे पहुंचे हैं पहले ना, फिर उसके बाद मुमकिन हो गया उनके लिए। तो फरमाते हैं कि इस सूरत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकतूब बनाम मलका सबा बिल्कीस, जिसका नाम बिल्कीस था, पूरा का पूरा नकल फरमाया गया। ये एक पैगंबर व रसूल का खत है, और कुरान करीम ने उसको बतौर इम्तिहान के इस्तेहसान के नकल किया है, बतौर इस्तेहसान। ठीक है, यानी एहसान करते हुए। ठीक है, इसलिए इस खत में जो हिदायत खतो किताबत के मामले में पाई जाती हैं, वो मुसलमानों के लिए भी काबिले इत्तेबा है। ठीक है, यानी कुरान करीम ने इस खत के मजमून को जो है ना, वो यानी अब बजाहिर इस मजमून का में क्या फायदा कि भी उन्होंने उनको क्या 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 मैसेज लिखा था। ठीक है, लेकिन चूंकि कुरान मजीद किताब हिदायत है, तो उसकी हर हर चीज के अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ हिदायत मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है ना, कि अल्लाह ताला ने हमें बगैर हिदायत के दुनिया के अंदर अंधेरे में अपना रास्ता टटोलने के लिए छोड़ नहीं दिया। ठीक है, अपना कलाम भी दिया और अपने बंदे भी दिए, जो कि उस कलाम को समझ करके हमें आगे समझाते हैं। कातिब अपना नाम पहले लिखे, फिर मकतूब इलैह का नाम लिखे, यानी जिसकी तरफ वो मैसेज लिखा गया। सबसे पहले एक हिदायत तो इस खत में यह है कि खत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने नाम से शुरू किया। मकतूब इलैही का नाम किस तरह लिखा, कुरान करीम के अल्फाज में वो मजकूर नहीं है। ठीक है, यानी बिल्कीस का नाम यहाँ पे मेंशन था, नहीं था, कैसे था, ये सब कुरान मजीद ने नहीं बताया। मगर इतनी बात इससे मालूम हुई कि खत लिखने वाले के लिए सुन्नत अंबिया ये है कि सबसे पहले अपना नाम लिखे, जिसमें बहुत से फवायद हैं। मसलन, खत पढ़ने से पहले ही मकतूब इलैह के इल्म में आ जाए कि मैं किसका खत पढ़ रहा हूँ, ताकि वो उसी माहौल में खत के मजमून को पढ़े और गौर करे, मुखातब को ये तकलीफ ना उठानी पड़े कि कातिब का नाम खत में तलाश करे कि किसका खत है, कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब किसी इंसान के पास जिंदगी में एक ही खत आया, तो उसके लिए तो भाई ठीक है, उसके पास तो बड़ा टाइम होगा और आराम से खत को देखेगा, टटोलेगा। या कोई शख्स बहुत कम कभी कभार उसके पास खत आते हैं, तो उसके लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो अहम लोग होते हैं, राइट, जिनसे लोग जो है वो अपने मसाइल पूछा करते हैं, या जिनसे लोग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करते हैं, उनके पास तो फिर अच्छी खासी खतो किताबत होती है ना। ठीक है, तो अब उनके लिए अगर ये उनको सर्च करना पड़ जाए कि भाई इसमें कहाँ नाम लिखा हुआ है, किसकी तरफ से है, उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। उनको तो भाई बहुत सारे इंटरव्यू खत निपटाने होते हैं ना, तो खत लिखने वाले को उनके इस मुकाम का और उनके इस मसरूफियत का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो खत इस तरह से लिखे कि उनके लिए कन्वीनियंट, कन्वीनियंस हो उसके अंदर ना उसको पढ़ना। तो जाहिर मलका सबा तो पूरे इतने बड़े सल्तनत की जो है वो मलका थी, जिसका तख्त इतना बड़ा हो तो उसकी सल्तनत कितनी आलीशान होगी। तो उसके पास खत जो है वो अच्छे प्रॉपर आदाब के साथ ही आना मुनासिब था, तो उसको ये तकलीफ ना उठानी पड़े कि कातिब का नाम खत में तलाश करे कि किसका खत है और कहाँ से आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मकातीब मनकूल और शाया शुदा आलम में मौजूद हैं, बाकायदा किताब की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत जो है ना वो पब्लिश हुए हुए, उनके असल अक्स भी बहुत, यानी सबका तो नहीं लेकिन कुछ का असल अक्स भी मौजूद है, तो उन सब में भी आपने यही तरीका इख्तियार फरमाया है कि मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाही व रसूलिही, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत को शुरू किया। मिन सुलेमाना, उसी तरह से मिन मुहम्मदिन। यहाँ एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि जब कोई बड़ा आदमी अपने छोटे को खत लिखे उसमें तो अपने नाम की तकदीम पर कोई इश्काल नहीं है, लेकिन कोई छोटा अपने बाप, उस्ताद, शेख या किसी बड़े को खत लिखे तो उसमें अपने नाम को मुकदम करना क्या उसके अदब के खिलाफ ना होगा, ठीक है। तो एक सवाल, इल्मी सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े थे, मलका सबा छोटी थी, नबी अलैहिस्सलाम बड़े थे, बाकी जितने भी बादशाह फरमानरवा थे वो सारे के सारे छोटे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस वजह से अपना नाम पहले लिखा, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा बड़े को लिखे तो क्या मामला हो गया होगा, तो क्या अपने नाम को मुकदम करना उसके अदब के खिलाफ ना होगा, और उसको क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस मामले में हजरात सहाबा कराम का अमल मुख्तलिफ रहा है। अक्सर हजरात ने तो इत्तेबाए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब पर मुकद्दम रखकर खुद अहज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खतूत लिखे उनमें भी अपने नाम को मुकद्दम लिखा है, ठीक है। यानी इत्तेबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके नजदीक ज्यादा अहम थी, और अदब जो है ना वो तो वो करते ही थे, इतना अदब करते थे कि वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे, नबी अलैहिस्सलाम के थूक को जो है वो अपने हाथ पे लेकर के अपने चेहरे के ऊपर मला करते थे, इतनी अदब और इतनी मोहब्बत है ना सहाबा कराम की। बड़े बड़े मसले हो जाए, बड़ा बड़ा कुछ हो जाए, आपस में इख्तलाफ हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम की बात आ गई, खत्म, सब कुछ खत्म, मान लिया नबी अलैहिस्सलाम ने जो भी फरमाया, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना उन्होंने अपने नाम को मुकदम क्यों रखा, इत्तेबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तेबा जो है ना एक ऐसी चीज है, अल्लाह का हुक्म भी है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते ही सही हम तक पहुंचा है, लेकिन है अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद में, फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, ठीक है, कि जो मेरी तरफ रुजू करने वाला हो उसके रास्ते की इत्तेबा करो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा इत्तेबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। सहाबा इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे, ठीक है। तो जो खतूत लिखे उनमें भी अपने नाम को मुकद्दम लिखा है। रूहुल मआनी में बहरे मुहीत के हवाले से हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल नकल किया है कि उन्होंने ये फरमाया कि जिसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो कोई इंसान काबिले ताज़ीम नहीं, मगर सहाबा कराम जब आपको भी खत लिखते तो अपना नाम ही शुरू में लिखा करते थे, और हजरत अला अल हुदरमी रजी अल्लाह तआला अन का खत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मरूफ है वो इस पर शाहिद है। जी माशाल्लाह, ठीक है। ये बाकायदा ये यानी ये मकूला मशहूर है अरबी जुबान के अंदर, अल हुक्मु फौक अल अदब, कि हुक्म जो होता है ना ये अदब से भी ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। तो हुक्म क्या है, फत्तबे सबीला, और अदब क्या है कि जी नाम जो है वो पहले लिखें, बड़े का नाम पहले लिखें, तो अल हुक्म फौक अल अदब, ठीक है। जब कोई बड़ा कह रहा है कि अभी आप जो मेरे आगे चलें, ठीक है ना, तो अब जो है वो आप उनके पीछे पीछे ना चले, उनका हुक्म माने और उनके आगे आगे चले। हमारे आप लोग पुराने लोग तो सुन चुके हैं कि हजरत जी ने एक वाकया सुनाया हमारे, कि उनके जो शेख थे ना हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, बड़े लंबे चौड़े और बिल्कुल ऐसे कि उनको देखकर के सब कहते थे कि ये तो बंदा बशर नहीं है, ये तो फरिश्ते हैं, ऐसा उनका जो है ना वो, यानी माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी थी। तो एक दफा जो है ना वो मक्का मुकरमा में हरम से निकले, तो एक साथी ने, मुकामी कोई रहते थे वहां पे, उन्होंने कहा कि हजरत आप हमारे यहाँ खाने के लिए चले। उन्होंने कहा चलो ठीक है, खाने की दावत मिली है मक्का मुकरमा में, चलो भी ठीक है। तो अब वो जो साथी है ना जो अपने घर खाने के लिए ले जा रहे थे, उस जमाने में बहुत आज से 60-70 साल पुरानी बात हो गई है शायद, तो कच्चे कच्चे रास्ते सब, इस किस्म के हाईवे और सड़कें ये सब कुछ तो नहीं बनी थी, तो वो पहाड़ों के ऊपर ही उनका घर था। तो अब ये जो है ना वो चल रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं, हजरत आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहा भाई तुम्हारा घर है, तुम्हें रास्ता पता है, जगह जगह जो है वो मोड़ मोड़ना पड़ रहा है, तो तुम पीछे से मुझे बोल रहे हो, तो मुझसे गलती हो रही है, मैं वैसे भी बूढ़ा आदमी, मुझे क्या समझ में आएगा, तुम मेरे आगे चलो। तो वो कहा नहीं 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 हजरत हजरत आप ही आगे चले, आप बड़े आप आगे चले। तो हजरत ने कहा चलो ठीक है भाई, थोड़ा और आगे चले। फिर जो है इसी किस्म की गड़बड़ होने लगी, हजरत ने कहा भाई तू आ मेरे आगे चल। नहीं 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 हजरत आप बड़े हैं, आप बड़े आप आगे चले। ठीक है, तो बिल आखिर ना हजरत ने कहा ओए तू मेरा शेख है कि मैं तेरा शेख हूँ, मेरा हुक्म, मेरी बात मान लो यार, आगे मैं तुम्हें कह रहा हूँ आगे चलने के लिए, उसमें आसानी है, मेरे लिए भी आसानी है, तुम्हारे लिए भी आसानी है, पीछे से जो है वो जाकर के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा हूँ मुझे। ठीक है, तो अल हुक्म फौक अल अदब, जब बड़ा कोई हुक्म देना तो उस वक्त अदब, अपने अदब और अपनी अकल को जो है ना वो बालाए ताक रख देना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे फरमाते हैं कि अलबत्ता रूहुल मानी में मजकूरा रिवायात नकल करने के बाद लिखा है कि ये सब कलाम अफजलियत में है, जवाज में नहीं। यानी सारी जो डिस्कशन है, ये सब कलाम से मुराद ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ना, ये अफजलियत की डिस्कशन है कि ज्यादा अफजल क्या है। ठीक है, ये जायज और नाजायज वाली डिस्कशन नहीं है कि नाम उनका लिखना, बड़े का लिखना जो है वो नाजायज है या अपना लिखना नाजायज है, ये डिस्कशन है। ठीक है, अगर कोई शख्स अपना नाम शुरू के बजाय अखीर में लिख दे तो ये भी जायज है। ठीक है, और दूसरी सूरत भी जायज है। फकी अबुल लैस की बुस्तान में है कि अगर कोई शख्स मकतूब इलाही के नाम से शुरू कर दे तो उसके जवाज में किसी को कलाम नहीं, क्योंकि यानी उसके जवाज में किसी को कलाम नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि भाई नाजायज काम कर दिया इसने, कि उसने जो है ना वो एड्रेसी का नाम जो है वो पहले लिख दिया, नहीं वो भी जायज है, क्योंकि उम्मत में ये तरीका भी चला आ रहा है, इस पर नकीर नहीं की गई। ठीक है, यानी उम्मत के जो, जिसको कहते हैं तआमुले उम्मत, तआमुले उम्मत, उम्मत का अमल इसके ऊपर रहा है कि हमारे जो अकाबरीन हैं, बड़े हैं, उन्होंने ऐसा भी किया है। ठीक है, तो हमारा दीन तो है ही अहले सुन्ना वल जमात। ठीक है, के जो सहाबे कराम की सुन्नत थी, नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी, और जो अकाबिर उलमाए कराम का जिस बात के ऊपर अमल था, वही वही हमारा अमल भी है। ठीक है, इसी को अहले सुन्ना वल जमात कहते हैं। तो इस पर ऐसा ना तआमुले उम्मत जो है ना, कि उम्मत का अमल किस बात के ऊपर रहा है, ये एक अथॉरिटेटिंग दलील है हमारे दीन के अंदर, जिस तरह कुरान मजीद एक दलील है। ठीक है, सबसे अहम और सबसे बड़ी दलील ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का कलाम है, दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम का कलाम या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हदीस सब कुछ। ठीक है, ये कुरान मजीद के बाद इसका नंबर आता है, और तीसरे नंबर पर जो है वो तआमुले, यानी सहाबे कराम का अमल, और सहाबे कराम के बाद जो फुकहाए उम्मत हैं और मशायख हैं और उलमाए कराम हैं उनका अमल। ठीक है, ये जो अक्सर एक बहस चल पड़ती है ना कि मर्दों और औरतों की नमाज का तरीका जो है ना वो मुख्तलिफ नहीं है, वो सेम है। ठीक है ना, न क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, के नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। तो अब इस हदीस के अंदर औरत मर्द की कोई तख्सीस नहीं है, बस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। ठीक है ना, तो अब जो है वो भाई ये हुक्म जो है ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भी दिया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सल्लू का सीगा इस्तेमाल किया जो कि औरतों मर्दों दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है ना जिन्होंने हदीस के अल्फाज ही को समझा कि बस जो अल्फाज हदीस है ना यही हुज्जत है हमारे ऊपर, या यही जो है ना वो सोर्स ऑफ फिका है, तो उन्होंने फिर औरतों को भी कहा भाई आप भी जो है ना वो ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दें जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, चाहे आपकी टांग जो है वो कितनी भी अच्छा, वो ये लोग हैं वो सिर्फ ये नहीं कि हमारी तरह थोड़ी सी टांग खोल करके पढ़े, टांग
भी जो है ना ऐसी खोल के पड़ते हैं कि जैसे लगता है बंदा गिर ही जाएगा, है ना। अब औरतों को भी भाई, औरतें भी इसी तरीके से पढ़े, तो क्या बदतमीजी है, यानी हद होती है चीज की, ठीक है। तो वो टांग चीर करके पढ़ रही है और खुल करके जो है वो सजदा कर रही है, खुल करके जो है ना वो निकल रुकू कर रही है, ठीक है। तो इस ये जो है ना कि इस हदीस में तो दोनों को एक ही तरीके से नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, इसका जवाब कोई नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं है सिवाय किस चीज के, तआमुल उम्मत के, राइट। इसका जवाब कोई हदीस है ही नहीं आपके पास, अगर है भी तो छोटी मोटी वो कला ऐसी किसी छोटी किताब के अंदर है, किसी ऐसी किताब के अंदर है जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होता, राइट। तो हदीसों में तो इसका जवाब नहीं मिलेगा कि भाई औरत की नमाज होती है वो मुख्तलिफ तरीके से होती है। हमने एक जमाने में बड़ा कोशिश करी थी, ठीक है, बड़े मजामीन भी बुजुर्गों के लिखे पड़े, वो कहीं कोई ऐसी चीज ही नहीं मिल रही जिससे कि आप किसी को कन्विंस कर सके। आखिर में जाकर के जो है ना वो वही बात खुल करके आई, भाई तआमुल उम्मत की बुनियाद पर औरतों और मर्दों की नमाज का तरीका फर्क है, उम्मत में हमेशा औरतों ने जो है वो मर्दों से अलग नमाज पढ़ी है, और उसके ऊपर अकली दलायल, एक से बढ़कर एक अकली दलायल मौजूद है, ठीक है। तो तआमुल उम्मत जो है ना ये इतनी अहम चीज है, ठीक है। अब आज के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ ही इस चीज के साथ है दुनिया को, कि कुरान को पढ़ो और खुद से फॉलो करो, हदीस को पढ़ो और खुद से फॉलो करो, ये उम्मत का तआमुल जो है ना ये तो ऑब्सोल्यूट हो गया, ये तो कोई पुराने जमाने की चीज हो गई, गई गुजरी चीज हो गई, इनको तो फॉलो करने की कोई तुक ही नहीं बनती, इसका तो कोई दीन में कोई 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 सिग्निफिकेंस ही नहीं है तआमुल उम्मत की, है ना। ये तो तुम उम्मत हो, तुम अपना तआमुल करो और इसको तआमुल उम्मत बना लो, है ना। तुम्हारा अमल जो है ना वो तआमुल उम्मत है, हम जैसे जायरों का, हम जैसे गुनाहगारों का, और जिस किस्म के नफ्स परस्ती के जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमारा अमल जो है वो तआमुल उम्मत बन गया। और जो नेकों के जमाने के और असलाफ के जमाने के जो जो लोग थे उनका अमल जो है वो कोई हैसियत नहीं रखता, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तआमुल उम्मत। तो यहाँ पर तो बहरहाल एक बहुत ही छोटे से मसले की बात हो रही थी, नमाज तो सबसे बड़ा यानी रुकन दीन है, ठीक है, चार में से सबसे अहम रुकन दीन नमाज है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लेटर लिखने के ऊपर तआमुल उम्मत की बात हो रही थी। खत का जवाब देना भी सुन्नत अंबिया है। तफसीर कुर्तुबी में है कि जिस शख्स के पास किसी का खत आए उसके लिए मुनासिब है कि उसका जवाब दे, क्योंकि गायब का खत हाजिर के सलाम के कायम मुकाम है। इसीलिए हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से एक रिवायत में है कि वो खत के जवाब को जवाब सलाम की तरह वाजिब करार देते थे, ठीक है। जैसे कोई आपको आकर के सलाम करे ना तो आपके ऊपर वाजिब होता है कि आप उसको जवाब दें, तो उसी तरह खत का जवाब देने को। अब खत का जवाब देना या तो जुबानी जवाब देते हैं या लिख करके जवाब दे दें, या कम से कम उसी वक्त जो है वो उनको वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, उनके लिए उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त करी है तो उसी वक्त उनके लिए दुआ कर दें, ठीक है। अब ये इंसान के अपने हालात के ऊपर भी होता है कि भाई अगर दिन के 24 घंटे हैं और जो है वो ऐसे हैं कि खत्म ही नहीं होकर के दे रहे, तो हर एक का जवाब देना मुमकिन नहीं रह जाता, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से बंदा कोशिश करता है, और जाहिर है फिर मामला ये होता है कि जितना उसके लिए मुमकिन हो उतना तो करे ना। फिर खतूत में बिस्मिल्लाह लिखना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजकूरा खत से नीज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मकातीब से एक मसला ये साबित हुआ कि खत के शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखना सुन्नत अंबिया है। रहा यह मसला कि बिस्मिल्लाह को अपने नाम से पहले लिखें या बाद में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकातीब इस पर शाहिद हैं कि बिस्मिल्लाह को सबसे मुकद्दम। इसके बाद कातिब का नाम फिर मक्तूब वाले का नाम लिखा जाएगा। कातिब यानी लिखने वाला, मक्तूब वाले जिसके नाम लिखा है। तो ये जो है ना वो सुन्नत अंबिया से यही तरतीब साबित है, लेकिन ये तरतीब जो है वो जवाज की तरतीब है, दूसरा वाला तरीका भी जायज है। और कुरान करीम में जो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के का नाम पहले और बिस्मिल्लाह बाद में मजकूर है, इसके जाहिर से जवाब इसका भी मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह अपने नाम के बाद लिखी जाए। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज निशान लगा था क्योंकि दो मैसेजेस भी आए हुए हैं और आपको आवाजें आ ही रही होंगी, गले का जो हाल हुआ है। टेलीफोन कॉल का भी ये हुक्म है कि नहीं? टेलीफोन कॉल का भी है तो वो भी एक एक मैसेज ही ना, वो भी कम्युनिकेशन का एक, क्योंकि खत जो है वो दूसरे दर्जे पर है,
पहला दर्जा क्या है कि कोई बाकायदा आपसे आकर कलाम करे, ठीक है। तो टेलीफोन जो है ना, ये खत और कलाम के दरमियान की एक चीज हुई ना, क्योंकि वो खुद आपके सामने तो मौजूद नहीं है और ना जो है वो लिख करके आपको दे रहा है, लेकिन वॉइस कम्युनिकेशन टेलीफोन के जरिए से होती है। तो अब ये दरमियान की चीज बनती है। तो अब टेलीफोन कॉल का हुक्म जो है वो इब्न अब्बास के मजहब के मुताबिक तो वाजिब, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं का मजहब है वाजिब, बाकी किसी का मजहब हजरत ने यहाँ पे लिखा नहीं है कि सभी इसको वाजिब कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इस्तेहबाब का दर्जा तो होगा कि जब आप जवाब देंगे तो ये ज्यादा बेहतर अमल है और इसके ऊपर आपको सवाब भी मिलेगा, नहीं देंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। इस्तेहबाब का ये मतलब होता है, करें तो सवाब मिलेगा, नहीं करें तो गुनाह नहीं मिलेगा। और वाजिब का मतलब क्या होता है, जो कि इब्न अब्बास का कौल है, वाजिब वाजिब का मतलब ये होता है करेंगे तो सवाब तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा, जिसका मतलब होता है पिटाई, ठीक है, यानी पिटाई होगी, ठीक है। तो अब इब्न अब्बास के मजहब को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अगर मसरूफ आदमी हैं और आपके ऊपर दीगर जिम्मेदारी है तो हर फोन कॉल का जवाब दे सकें, हर खत का जवाब दे सकें, ठीक है। विल दिस अप्लाई टू व्हाट्सएप मैसेजेस एज वेल, द कंपल्शन ऑन रिप्लाई रिप्लाई अगर किसी ने डायरेक्टली आपको मैसेज किया है और फजूल की कोई ऐसी चीजें नहीं है, तो फिर मतलब पर्सनली आपसे बात करना चाह रहे हैं और कोई अहम बात है तो ठीक है, मतलब वो भी रिटन कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन जैसे कि बात हो चुकी है कि वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना कम्युनिकेशन का, स्पेशली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के आने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन टाइम तो नहीं बढ़ा ना। टाइम तो वही जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 24 घंटे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 24 घंटे थे, नहीं हमारी जिंदगी में वही 24 घंटे, ठीक है। तो उस जमाने में तो ना फोन होता था ना व्हाट्सएप होता था, हमारी जिंदगी में तो सब कुछ भी है, टाइम वही वही का वही है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से अपने अपने शरीर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, क्लास हम यहाँ पे खत्म करें, लेकिन एक छोटे से ऐलान के साथ कि इंशाल्लाह इरादा किया हुआ है कि बुध से जो है ना वो हम तफसीर की क्लास की जगह एक दूसरी किताब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वो किताब है हमारे हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामबरकातुहुम की लिखी हुई मिसाली मर्द, मिसाली मर्द, जिसको अंग्रेजी में अगर करें तो एग्जेम्पलरी मैन, ठीक है। तो वो एक बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त किताब है और उसकी हमें शदीद जरूरत महसूस हो रही थी बड़े अरसे से कि हम इस किस्म का कोई मौजू शुरू करें, लेकिन कोई तरतीब जहन में आ नहीं रही थी कि कैसे शुरू करें, ठीक है। अल्लाह ताला की हर चीज का एक वक्त होता है, तो अभी जो है ना कुछ दिन पहले दिल में बात आई कि मिसाली मर्द ही को पढ़ाना क्यों ना शुरू करते, ठीक है। तो हजरत की वो बेहतरीन किताब है, उसका फिर आज मैसेज भी इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को भेजेगा, और सबसे यही दरख्वास्त होगी कि खुद भी अटेंड करें और दूसरों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इससे जो है वो सबको फायदा होगा, इस सब के लिए होगी, ये जिसके लिए ये वाली क्लास है वो उसके लिए ये वाली क्लास भी होगी, बिकॉज सेम टाइम है ना, यही वेंसडेज 8 PM टू 8:45 KSA टाइम, और इसी हिसाब से दूसरे मुल्कों को जो वक्त बनता है, ठीक है। इंशाल्लाह वो मैसेजेस में आपको ग्रुप के ऊपर अगर आप हैं तो आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।